ओम शांति। आज बहुत हर्ष का दिन है कि हमारे बीच डॉक्टर राजेश भाई जी आए हैं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर राजेश को आप सब लोग काफी अच्छी तरह से जानते हैं। मधुबन के हमारे सबके प्रिय जीतू भाई जी, उनके ये लौकिक भाई हैं और बहुत लंबे समय से मधुबन में इनका आना जाना होते रहता है। कई बार हमने इनको हॉस्पिटल में भी सेवाएं देते हुए देखा है और अभी भी जब भी मधुबन में आते हैं तो हॉस्पिटल में जरूर आते हैं। और हॉस्पिटल में हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां पर भी पहले भी और अभी भी बीच बीच में सेवाएं देते रहते हैं। और एक और बात इनके बारे में कि इनका बहुत ही सरल स्वभाव है जिससे तो आप सब परिचित हैं ही। और एक बात कि जो बाबा कहते हैं संस्कार मिलन की रास, तो सबसे बहुत ही जल्दी हिल मिल जाते हैं। तो आज तो वो हमारे बीच एक बहुत अच्छा विषय है, तीव्र पुरुषार्थ का डिजिटल एक्सरे। जैसा इनका प्रोफेशन है रेडियोलॉजी, तो अभी वर्तमान में वो नासिक में है और जैसा इनका प्रोफेशन है रेडियोलॉजी, तो उनको एक्सरे रिपोर्टिंग करना पड़ता है, एक्सरे देखना पड़ता है, सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई और भी बहुत सारी बातें जो रेडियोलॉजी में है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, देखते हैं। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि हमें कुछ एडवाइस चाहिए होती है तो हम इनसे फोन पर भी एडवाइस लेते हैं कोई पेशेंट्स के बारे में, कोई रिपोर्ट के बारे में। तो आज पर जिस विषय पर वो हमको बताएंगे वो है इसका एक आध्यात्मिक पहलू, मतलब तीव्र पुरुषार्थ जो है, यदि इसका एक्सरे किया जाए तो हमको इस एक्सरे में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज दिखेंगी और उनको फिर हम कैसे हल करें, सॉल्व करें, उनका क्या ट्रीटमेंट करें, उसके बारे में वो हम सबको आज बताएंगे। तो राजेश भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति। आज का टॉपिक का जो नाम है थोड़ा हटके है ना, सचिन भाई ने दिया एक्चुअली नाम। वो एक्चुअली जब भी हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है ना, शारीरिक हेल्थ प्रॉब्लम आती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि कुछ जांच बोलते हैं हमें करने की, तो उसमें एक इंटीग्रल पार्ट होता है एक्सरे का। एक्सरे एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, तो वो एक्सरे देख के डॉक्टर को पता पड़ता है हमें कि इस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स फिर देख के हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को क्योर करते हैं। उसी अनुसार अगर हम लोग अपने तीव्र पुरुषार्थ जीवन का अगर एक्सरे निकाले ना, तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मालूम पड़ेगी। अभी प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट जो है वो तो बहुत है, लेकिन मैंने उसमें से 7 जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं जो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो जब भी हम लोग पेशेंट का एक्सरे लेते हैं तो कुछ कुछ जो चीजें हैं वो तो बड़ी ग्रॉस होती है कि इजीली दिखती है और मालूम पड़ जाती है, और कुछ कुछ जो होती है वो बड़ी सूक्ष्म होती है, माइन्यूट होती है, तो उसमें बहुत ही डिटेल हमें देखना पड़ता है, बारीक से देखना पड़ता है, तभी वो मालूम पड़ती है। तो ऐसे जो डिफेक्ट्स है मैं आपको साथ जो तीव्र पुरुषार्थ जीवन में हमें जो आते हैं प्रॉब्लम, उसमें भी कुछ ग्रॉस चीजें हैं जो इजीली मालूम पड़ती है हमको भी और औरों को भी, और कुछ एकदम सूक्ष्म होती है। तो जो ग्रॉस चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट तो है आलस्य। आलस्य हमारे तीव्र पुरुषार्थ में बाधा डालता है। फिर सेकंड है अलबेलापन। थर्ड है साधनों से अधीनता। ये 3 ग्रॉस चीजें हैं। जो सूक्ष्म चीजें हैं और 3 वो है सूक्ष्म मीन्स सूक्ष्म इम्प्यूरिटी का अंश। बाद में 5th है परचिंतन और परदर्शन। 6th पॉइंट है मैपन की स्मृति और बाप की विस्मृति। और 7 जो पॉइंट है ना कि हम लोग यूजुअली कॉमनली डिस्कस नहीं करते हैं, जो ब्राह्मण है हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर हम लोग बीमार होते हैं, हमें कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आते हैं, तो क्या हम लोग तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सेवन जो पॉइंट है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं वो भी डिस्कस करना चाहूंगा कि शारीरिक जो प्रॉब्लम है वो कैसे हमारे तीव्र पुरुषार्थ में बाधा डालते हैं। तो चलो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एक वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या डिफेक्ट्स है जो हमें मालूम पड़ती है, और उसका सॉल्यूशन क्या है सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो पहला है आलस्य। देखिए अभी एक कलयुग के अंत में आलस्य ना एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है अपने ह्यूमन बीइंग का, कि हर मनुष्य को कुछ न कुछ अंश में आलस्य जरूर है। तो ब्राह्मण जीवन में क्या होता है कि अगर कोई ब्राह्मण तीव्र पुरुषार्थ करने में लगता है तो उसका ऐसी कौन सा एक निशानी है या फिर एक दिनचर्या का पार्ट है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है या फिर इजीली मालूम पड़ता है, तो वो है अमृत वेला। अगर हम अमृत वेला ठीक से टाइम पे नहीं उठ पाते हैं हम लोग, तो उसका एक मेन कारण है आलस्य। ठीक है, तो हमारी योग की जो कमी है वो एक्चुअली आलस्य के कारण होती है। योग का जो सब्जेक्ट है अपना वो वीक हो जाता है, तो हम लोग तीव्र पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। सेकंड है ज्ञान का सब्जेक्ट, कि हम लोग मुरली पे संगठन में टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर हमें जो भी होमवर्क दिया गया है वो हम लोग टाइमली नहीं कर पाते हैं। तो ये आलस्य हमारे जो पुरुषार्थ में बहुत ही बाधा डालता है और आगे बढ़ने में रोकता है। तो आलस्य के मुख्य कारण कौन से हैं? तो कुछ स्थूल कारण हैं, कुछ सूक्ष्म कारण हैं। अगर हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है तो हमें आलस्य आता है। अगर हमारा स्लीप साइकिल ठीक नहीं है तो हमें आलस्य आता है। अगर हमारा फूड बैलेंस नहीं है, हमारी फूड हैबिट ठीक नहीं है, तो आलस्य आता है। ये तो मोटे कारण है एक्चुअली। जो सूक्ष्म कारण है वो कौन से हैं? तो सूक्ष्म कारण जो है वो है माइंड रिलेटेड, कि हमें कोई एक कोई भी ध्येय या टारगेट हम नहीं रखते हैं, इसके कारण हमें आलस्य आता है। अभी एग्जांपल देखा जाए तो अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर पढ़ रहा है तो वो अगर मन में ठान लेता है कि मुझे इस क्लास में फर्स्ट आना ही है या फिर मेरिट लिस्ट में आना ही है या फिर 90% के ऊपर मार्क्स लेने ही है मुझे, तो क्या होगा, वो आलसी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में हमेशा वो टारगेट रहेगा, तो वो आलसी हो ही नहीं सकता। अगर वो आलसी हो गया तो वो अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आलस्य के फिर सॉल्यूशन क्या है? अगर आलस्य बड़ा एक शत्रु है तो फिर उसके सॉल्यूशन क्या है, कि आलस्य हमें कैसे भगाना है? तो आलस्य अगर दूर भगाना है तो हमें हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी और माइंड को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आलस्य को दूर भगाना है तो मैं जो फॉलो करता हूं, आपको बोलता हूं मैं एक्चुअली, जो प्रैक्टिकली मैं फॉलो करता हूं, कि 10 बजे के पहले 9:30 to 10 के बीच में आपको सो जाना है। ठीक है, उसके लेट अगर होते हैं तो डेफिनेटली अपना नेक्स्ट जो दिन है वो ठीक नहीं जाता है, अमृत वेला हो नहीं पाता है, आलस्य आता है। ठीक है, अगर हम लोग अमृत वेला उठते हैं तो उसके बाद में भी हमें नहीं सोना है, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। बहुतों को अमृत वेला होने के बाद में सोने की आदत रहती है, तो उससे कारण क्या होता है कि पूरे दिन में सुस्ती आती है। ठीक है, तो अमृत वेले के बाद में भी नहीं सोना है। अगर आपको दोपहर में नींद की आदत है तो आपको 20-25 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट्स के ऊपर हमें नहीं सोना है। दिन में भी हमें जो फूड है हमारा, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस से बोलते हैं कि हम लोग अगर 2-3 बार खा रहे हैं तो तो हमें वो डिवाइड करके 4 से 5 बार खाना है। और जब भी आप खाओ तो 2 गिट्टी कम खाना है, जब भी खाओ आप। तो हमें सुस्ती नहीं, तो हमें, हम अगर ये फॉलो करेंगे ना तो दिन भर में सुस्ती नहीं आएगी हमें, हम लोग चुस्त रहेंगे। तो 2 गिट्टी हमेशा कम खानी है। सबको पता है कि, हाँ जी, नहीं हम बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ अगर हम लोग 3-4 या 4 बार खा रहे हैं, हेवी खा रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है उससे हमें 2 गिट्टी कम खानी, 80% खाना है। अगर बाद में भूख लगती है 1 घंटे के बाद में, तो फ्रूट खा लो, पॉपकॉर्न खा लो, मुरमुरा खा लो, छाछ पी लो, दही खा लो, ये हम लोग कर सकते हैं अगर हमें भूख लगती है तो। तो 4 से 5 बार अगर हम लोग खाते हैं तो हमें भूख बीच में नहीं लगेगी, और ये हमें फॉलो करना है। अगर ज्यादा खाएंगे तो सुस्ती आएगी, तो आलस्य आएगा, तो आपका पुरुषार्थ तो अफेक्ट होना ही है, ठीक है। और हमें आलस्य बढ़ाने के लिए माइंड के ऊपर, ठीक है, माइंड के ऊपर कंट्रोल देना है। हमें कुछ टारगेट सेट करने हैं, शॉर्ट टारगेट जो बोलते हैं, एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं कि इस मंथ में मुझे अमृत वेला मिस ही नहीं करना है एक भी दिन, ठीक है, एक टारगेट है हमें। मैं इस महीने में मुरली टाइम पे जाऊंगा ही, एक भी दिन मिस नहीं करूंगा, है ना, कुछ भी हो जाए ऐसे। तो हम लोग ऐसे अगर टारगेट सेट करते हैं, शॉर्ट टारगेट सेट करते हैं, तो हम लोग वो मंथ के एंड में अचीव करते हैं या नहीं करते हैं वो देख लेना है। तो अगर टारगेट सेट करते हैं तो हमें आलस्य नहीं आएगा, ठीक है। फिर सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है अलबेलापन। हम लोग हमेशा आलस्य और अलबेलापन को एक साथ ले लेते हैं, लेकिन आलस्य से भी महान शत्रु जो है, जो डिफेक्ट है बड़ा, वो है अलबेलापन। क्या होता है कि हम लोग शुरुआत में जब भी ब्राह्मण बनते हैं तभी बड़े उत्साह से सब कुछ करते हैं, अमृत वेला करेंगे, ज्ञान मुरली करेंगे, ज्ञान चिंतन करेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग जब भी पुराने होने लगते हैं बहुत सालों के बाद में, क्या होता है, हमारा उत्साह में कमी आती है जरूर। मेरे उत्साह में भी ऐसी आते हैं जरूर, मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं ये कि होता है, ठीक है, उत्साह में कमी आती है। हम लोग सालों से अमृत वेला कर रहे हैं, 4-5 बार अगर मिस होता है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। मुरली अगर मिस भी कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेट भी चले जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कर लेंगे। तो लो, ब्राह्मण जीवन के प्रति या पुरुषार्थ जीवन के प्रति हम लोग काफी कैजुअल हो जाते हैं, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, हम ये जो है ये अलबेलापन है। ये तो स्थूल बातें हैं। सूक्ष्म बातें कौन सी है कि अगर हम लोग योग में बैठते भी है तो कैजुअली बैठेंगे, अलर्ट होके नहीं बैठेंगे, ठीक है। अगर अमृत वेला कर भी रहे हैं 45 मिनट्स तो एक्चुअल आउटपुट कितना है ना, 40 मिनट्स तो हम लोग विचार कुछ और ही चला रहे हैं, 5 ही मिनट सिर्फ हम लोग ने एक्चुअल जो है वो किया है। मुरली में भी देखिए आप कि हम लोग पूरा 1 घंटा बैठेंगे लेकिन मन कहां भागेगा, ठीक है। तो ये है अलबेलापन, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। तो इससे क्या होता है कि अपने पुरुषार्थ में अपने को लगता तो है कि हम लोग कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं निकलती, कुछ भी आउटपुट नहीं निकलती। तो फिर ये अलबेलापन का सॉल्यूशन क्या है, अभी है ना, अलबेलापन का सॉल्यूशन क्या है। तो अलबेलापन ये मेनली जो है ना, आलस्य जो है ना, ये मेनली शारीरिक इस पर आधारित है, लेकिन अलबेलापन जो है ये माइंड के ऊपर आधारित है, हमारे थॉट के ऊपर आधारित है। तो उसके उसको दूर भगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक मम्मा का सेंटेंस है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। अगर हम कभी अलबेले बनते हैं तो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, ये हम लोग अगर सेंटेंस याद रखते हैं, या फिर ये संगम युगी अमूल्य समय जो है वो वापस पुरुषार्थ के लिए कभी वापस नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये अगर याद करते हैं तो हम लोग अलबेले नहीं बनेंगे, ठीक है। और भी है कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि स्टूडेंट लाइफ का, हम लोग ब्राह्मण जो है ना मरते दम तक क्या है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट अगर कभी वीक हो जाता है तो उसका जो टारगेट है वो अचीव, ध्येय अचीव नहीं कर पाता, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है मिस पढ़ रहा है डॉक्टर, अगर वो अलबेला हो गया पढ़ाई में तो डिग्री ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, तो वो लाइफ टाइम डॉक्टर बन ही नहीं सकता। हाँ तो हाँ जी, नहीं हमारे हमारे हॉस्पिटल में हमारे कॉलेज में बहुत सारे थे कि वो उसका एज हो गया 50, लेकिन अब तक डॉक्टर नहीं बन पाया। क्यों? कैजुअल ले लिया उसने। तो वो हम लोग, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है एक्चुअली, विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनना, वो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे अगर अलबेले बनते हैं। तो अपने माइंड में डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की कमी के कारण हम लोग आगे नहीं बन पाते हैं। तो हमें दृढ़ निश्चय करना है कि हमें आगे बढ़ना ही है, तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। ठीक है, ये दो स्थूल कारण जो है वो हमने देखे। थर्ड जो बड़ा कारण है वो है साधनों से अधीनता, साधनों पे डिपेंडेंस। तो वो आजकल देखिए, साधन एक्चुअली जो है ना, हम ब्राह्मणों के फायदे के लिए बने हैं। जो भी साधन ले लिए हम ब्राह्मणों के भी और बाकी लोगों के भी। आप कोई भी साधन ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, एसी ले लीजिए, ठीक है, टेप रिकॉर्डर ले लीजिए, जो भी साधन बने हैं वो हमारे फायदे के लिए बने। हमने कभी सोचा भी नहीं था 10 साल पहले, 20 साल पहले, कि हम घर बैठे बाबा के साथ मिलन घर पे बनाएंगे, है ना। तो आजकल हम क्या करते हैं कि घर बैठे बाप मिलन हम लोग कर सकते हैं, सातों समुन्द्र पार हम लोग बाबा से उसी टाइम मिल सकते हैं, इतना फायदा है इसका। लेकिन अगर हम लोग उसका मिस यूज करेंगे और ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि व्हाट्सएप है, ठीक है, फेसबुक है, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो हम लोग अगर फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो टाइम उसमें जाएगा, हमारी एनर्जी जाएगी, हमारी संकल्प शक्ति जो जिससे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं वो हमारी वेस्ट होगी। तो अभी एग्जांपल देखिए कि अपना 20 साल पुराना फ्रेंड होता है, उसके साथ में हम लोग कनेक्ट होते हैं आजकल जो भी सोशल नेटवर्किंग है, तो उसका बर्थडे है तो उसको विश करना पड़ता है कंपलसरी, है ना। उससे हम लोग 20 साल में कभी बात नहीं करेंगे लेकिन बर्थडे जरूर विश करेंगे। वो छोड़ दीजिए, फ्रेंड के वाइफ का भाई है, उसका बर्थडे है, उसको विश करना पड़ता है, ठीक है। फ्रेंड कहां वेकेशन को जा रहा है, उसके फोटो देखने पड़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ना, वो कहां भी जाए। लेकिन ये बाय कंपल्शन आजकल तो बहुत सारी साइट जो है वो ऐसे प्रमोट करती है कि जो बुरी चीजें हैं वो दिखाना, लोगों को पढ़ाना, इनका काम है। तो ये हम लोग इसके पीछे अगर लगेंगे तो हम लोग पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर क्या सोल्यूशन है, क्योंकि इसका यूज तो हमें करना है, बंद तो नहीं करना है। अगर हम लोग व्हाट्सएप बंद करते हैं तो अपना ही लॉस है उसमें, नहीं। तो हमें क्या करना है कि इसका यूज हमें लिमिट करना है। अभी अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च ऐसे बोलता है कि हमें अगर साउंड स्लीप लेनी है तो जब भी हम लोग सोते हैं ना, तो आधे घंटे के पहले सब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स जो है वो बंद कर देने, ठीक है। हम लोग अगर 10 बजे सोते हैं तो 9:30 को सब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का यूज हमें बंद कर, तो टीवी हो, मोबाइल हो, ठीक है, कंप्यूटर हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जो है वो हमें बंद कर देने हैं, ठीक है। हम अगर कोई भी सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं तो उसका यूज हमें लिमिट करना है, 2 से 3 बार हम लोग वो यूज कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक अगर ना यूज करें तो बेहतर, मैं खुद वो यूज नहीं करता। अगर रिस्पेक्ट के लिए जो हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनको सिर्फ एक्सेप्ट करता हूं, बाकी मैं फेसबुक ज्यादा यूज नहीं करता हूं, ठीक है। व्हाट्सएप भी हम लोग 2 से 3 बार सिर्फ यूज कर सकते हैं, वैसा हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग टीवी की न्यूज देखते हैं वर्ल्ड के लिए अपडेट रहने के लिए, तो हम लोग आधा घंटा देख सकते हैं। ऐसे जो है ना, हम लोग ये लिमिट कर सकते हैं बेसिकली, हमें बंद तो नहीं करना है, जो बंद करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं करना है बंद तो हम लोग लिमिट जरूर कर सकते हैं उसको,
दो से तीन बार
दिन में मैं ऐसे करता हूँ। नहीं, कितनी देर के लिए? कैसा है कि जो यूज का है। हाँ, और ये आपको ये करना है कि व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग हमें ग्रुप में ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो ब्राह्मणों के लायक पढ़ने और देखने लायक नहीं है तो तुरंत एग्जिट करना है उससे, तो उसमें हमारा बड़ा लॉस है अगर हम लोग रहते हैं तो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि लिमिट करना है इसको, और जो लिमिट है हमें डिसाइड करनी है कि हमें आगे बढ़ना है ना, औरों को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। नहीं, बुरा लगता है तो उनको रिस्पेक्ट देके कि भाई मैं ऐसे ऐसे नहीं करता हूँ, तो कैसे हम लोग कैसे है ना कि अगर बुरा लगना अगर है तो हम लोग जी नहीं पाएंगे फिर, ऐसा लगता है। हर एक को अगर बुरा लगे हम लोग नहीं कर सकते ना हम लोग, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उनको प्यार से बोल के हम लोग एग्जिट ले सकते हैं। तो गाली तो हम लोग को सुनानी पड़ेगी ना, गाली अगर देंगे वो तो वो ग्रुप में देंगे है ना, तो तो उसको हम लोग पर्सनल टच में रहे। अगर वैसा कोई व्यक्ति है तो पर्सनल टच में, पर्सनल वॉल पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं, एकदम संबंध तोड़ ना दे उससे, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं वो है मेजर चीजें जो ग्रॉसली दिखती है। जो नेक्स्ट तीन है वो है सूक्ष्म, सटल इंप्यूरिटी फर्स्ट है उसमें का, सूक्ष्म अपवित्रता। अभी डेफिनेशन जो है ना प्यूरिटी की वो बहुत डीप है। इट इंक्लूड फिजिकल इंप्यूरिटी, प्यूरिटी ऑफ आईज, थॉट्स, इवन सिंगल नेगेटिव थॉट जो है वो हमें इम्प्योर करता है, ठीक है। तो हमें अभी एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि हम अगर सपोज हम लोग बात कर रहे हैं किससे, ठीक है, किसी रास्ते से जा रहे हैं, किसके ऊपर हमारी नजर पड़ती है या बात करते समय हम लोग किसको देखते हैं, तो अगर हमारे मन में थॉट आता है कि यह व्यक्ति ब्यूटीफुल है, ठीक है, हैंडसम है, तो क्या ये इंप्यूरिटी है? तो बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो जरूर है, ठीक है। लेकिन हमें ये इंप्यूरिटी जो है ये फर्स्ट जो आती है ना, कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं, बाद में उसका अट्रैक्शन की तरफ मोड़ते हैं और बाद में उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इम्प्यूरिटी तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग उसमें शॉर्ट में, कोई टाइम नहीं है तो कुछ शॉर्ट में हम लोग उसमें देखेंगे। तो ये है शारीरिक या फिर फिजिकल या फिर आईज की इम्प्यूरिटी। सेकंड है माइंड की इम्प्यूरिटी, कि अगर हमारे मन में व्यर्थ विचार चलते हैं, विकल्प चलते हैं, तो वो भी इम्प्यूरिटी है, ठीक है। तो उसके ये जो इम्प्यूरिटी है उसके ऊपर फिर सॉल्यूशन क्या है? अगर हम लोग ने अगर बहुत डीप ये डिफरेंस देखते हैं कि अगर देखना कोई व्यक्ति की तरफ, ये हमारे फेस की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो हम लोग उसके ऊपर फिर कैसे विजय पाए? तो हमेशा हम लोग जब भी किससे बात करते हैं, किसके संपर्क में आते हैं, किसको देखते हैं, तो क्या करेंगे कि उसके सोल को देखेंगे। बाबा बोलते हैं हमेशा कि उसको स्टार लाइक देखो, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग बातों में मिस भी हो जाता है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हमारा ऐसा लगा कि हमारा शरीर की तरफ ध्यान गया और हमारा आत्मिक स्मृति मिस हो गई, तो बाद में हम लोग इमर्ज करके उसके आत्मा में स्टार देख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हमारा हमें पुरुषार्थ अगर करना है तो उस व्यक्ति की तरफ अगर हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं,
बहुत ज्यादा हो जाएंगे,
नहीं हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है, नहीं नेक्स्ट स्टेप बोल रहा हूं आपको, उसको देख के मैं जो करता हूं बोलता हूं कि ये तो डिस्कशन का विषय है, ये चर्चा का विषय है, आप मुझे और भी कुछ बोल सकते हो। तो मैं क्या करता हूं कि अगर ऐसा होता है तो उसके एक स्टार देखता हूं और बाबा की तरफ से शक्ति लेके, एक प्यूरिटी की पावर लेके, शक्ति लेके मेरी तरफ आ रही है, वो आत्मा की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर बाबा पवित्रता का सागर है और मेरे में शक्ति भर रही है और मैं आत्मा की तरफ भर रहा हूं, तो जरूर मैं इस पर विजय पाऊंगा। ये अपोजिट भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट होता है, फेस की तरफ ध्यान जाता है, तो हम लोग रिवर्स भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि प्यूरिटी की डेफिनेशन बहुत डीप है, तो ये हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो शायद हम लोग प्यूरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। संकल्प विकल्प भी आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि एक 3 या 5 सेकंड में सूक्ष्म वतन और मूल वतन को जाएंगे, एक शेयर करके आएंगे, बाबा को टच करेंगे और आ जाएंगे वापस। तो अगर बाबा शांति का सागर है, ठीक है, शक्ति का सागर है, प्यूरिटी का सागर है, तो क्या होगा, उसको टच करेंगे अपनी आत्मा तो क्या होगी, अपने शक्ति में आएगी, शक्ति तो जरूर आएगी। तो हम लोग उस जो घड़ी है उसको हम लोग पार करेंगे। तो ये हो गया सटल, जो माइनर इम्प्यूरिटी है उसके ऊपर हम लोग कैसे विजय पाएंगे उसका यह बाद में। सेकंड है मीन्स जो फिफ्थ हमारा टॉपिक है वो है पर दर्शन और पर चिंतन। हम लोग जब भी वाणी में आते हैं तभी बहुत बार ऐसे होता है कि पर चिंतन करने लगते हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, उसका नेचर वैसे है, बाद में उसका कार्य वो ऐसे कर रहा है, उसका चरित्र ऐसा है। बहुत बार हम लोग ऐसी बातें करते हैं तो हम लोग पसंद में लग जाते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग सामने वाला व्यक्ति है उससे कंपेयर भी करते हैं, उसको देखते हैं, तो अपने मन में विचार चलते हैं और हम लोग कंपेयर के कारण ईर्ष्या भी करने लगते हैं। तो पर चिंतन करके हम लोग क्या करते हैं ना कि अपनी खुद की आत्मा को, है ना, खुद की आत्मा को, सामने वाले की जिसको हम लोग सुना रहे हैं उसकी आत्मा को और वातावरण को हम लोग निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, दूषित कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली। तो ये परचिंतन है, ये हमें नीचे ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम एनर्जी इसमें वेस्ट होती है, अपनी संकल्प शक्ति भी इसमें वेस्ट होती है और हमें वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं देता। तो परचिंतन का फिर सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो हम दो अपने पास ऑप्शन है। एक तो हम लोग साक्षी होके देखे, ठीक है, साक्षी होके देखे, लेकिन एक हम लोग जरूर करें कि अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो जो बड़े हैं, जो सीनियर है, उसके ऊपर सिर्फ एक बार इंफॉर्मेशन के लिए उनके एक बार बोल के हम लोग बाकी टाइम सब कुछ हम लोग साक्षी होके देखे। अभी सोचो कि अगर कोई व्यक्ति कैसा भी है उसमें सब अवगुण है, बहुत सारे अवगुण है, लेकिन अगर हम लोग उनका अवगुण का वर्णन करते हैं तो क्या चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तो कंट्रोल में नहीं है, हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। अगर हम लोग बार बार उसका वर्णन करते हैं, हर एक के पास करते हैं, तो क्या चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा, उसका व्यवहार अपने प्रति अच्छा हो जाएगा? चांसेस है 0% चांसेस है, नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ग्लानी कर रहे हैं उसकी। लेकिन अगर हम लोग उसमें का जो भी एक गुण है, गुण तो सब में होते हैं, एक भी गुण होता है, उसका अगर वर्णन करते हैं, उसके बारे में अगर बातचीत करते हैं, तो क्या चांसेस है कि अपने रिलेशन ठीक हो जाएंगे? ठीक हो सकता है ना, चांसेस तो है ना, कम से कम हो सकता है चांसेस। तो अगर हम लोग दो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो उसका गुण का हम लोग वर्णन करें और सेकंड है एकदम साक्षी दृष्टा होकर देखे, सिर्फ एक बार बड़ों को बात हम लोग कर सकते हैं, बाकी हम साक्षी होकर देखे। ये दो हमारे पास ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और जो ये परचिंतन है उससे हम लोग दूर जा सकते हैं। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि मैपन की स्मृति और बाप की विस्मृति। जब भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी हम लोग सेवा करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मैंने कार्य किया, ठीक है, मैं ये कर रहा हूं, मेरे कारण सफलता मिल रही है, मेरे कारण सफलता मिल रही है और संस्था का नाम हो रहा है। अगर हम लोग मैं के बीच में आते हैं तो हम लोग एक तो क्या है ना, अगर मैं आ गया तो बाप को भूल जाते हैं, ठीक है, तो बाप की स्मृति भूल जाएंगे। और पुरुषार्थ जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर मैंपन देहभान में आते हैं पहले, बाद में देहाभिमान में आते हैं, बाद में अहंकार का रूप ले लेते हैं। तो जो व्यक्ति अहंकारी होता है, जिसमें मैंपन भरा हुआ रहता है, वो एकदम ब्लाइंड हो जाता है। वो खुद को तो एकदम टॉप पे समझता है। जब भी उसका हम लोग जब भी अहंकारी व्यक्ति दिखाते हैं ना, तो क्या दिखाते हैं? एक चोटी पे दिखाते हैं, एकदम टॉप पे दिखाते हैं। तो अगर अहंकारी व्यक्ति है तो क्या होगा, वो हमेशा टॉप पे समझता है खुद को। तो अगर खुद को टॉप पे समझता है तो उसके ऊपर जाने के लिए कोई चांस है? टॉप के ऊपर, टॉप के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो क्या होगा फिर, वो ऊपर तो नहीं जा पाएगा ना। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है, तो ब्लाइंड होगा, टॉप पे है, चोटी पे है, ब्लाइंड है, तो क्या होगा, गिरेगा। तो ऊपर बढ़ने के चांसेस जो है वो 0% है, क्योंकि टॉप पे कुछ है ही नहीं। और नीचे के ज्यादा मीन्स 100% है, ब्लाइंड है ना वो, तो आगे कदम बढ़ाया उसने तो वो गिर गया, धड़ाम से गिरा। तो जो मैंपन है उसमें अहंकार आ जाता है, तो ये उसका लॉस हो जाता है। तो मैंपन के ऊपर या बाप की विस्मृति के ऊपर फिर सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो बाबा की अभी मुरली चली थी लास्ट, यही जो चली थी, तो उस बाबा ने क्या बोला था कि मैं आत्मा, जब ये बोलो मैं आत्माएं कर रही हूं, बाबा मुझसे करा रहा है, मैं निमित्त हूं। अगर मैं ना भी हूं तो ये कार्य कोई बंद नहीं पड़ने वाला, है ना, ये चलता रहेगा। बाबा मेरे से ये करा रहा है, मैं अगर नहीं हूं तो ये किसी और से करा लेगा, है ना। ये अगर हम लोग हमेशा याद रखते हैं तो हम लोग जरूर मैंपन के ऊपर विजय पाएंगे। ठीक है, और ये जो बात मैंने बोली कि चोटी के ऊपर है, अगर मैंपन आता है तो सोचो कि मैं गिरने वाला हूं, अगर गिरने नहीं, तो इसमें क्या है ना, बाबा ने अभी जो मुरली चलाई उसमें ये भी चला कि ये शायद कल की मुरली थी, कल संडे की मुरली थी, कि रियलाइजेशन। हम लोग जो भी सॉल्यूशन बोल रहे हैं ना आपके को, वो उसमें स्टेप है, प्रॉब्लम रियलाइजेशन सॉल्यूशन। अगर रियलाइज नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप रियलाइज करो और फिर आप आगे बढ़ो, नहीं तो आप तो पुरुषार्थी आप तीव्र तो फिर दूर की बात है एक्चुअली, फिर पुरुषार्थ नहीं भी आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रियलाइज करो कि मैं गिर जाऊंगा, नहीं पॉजिटिव हम लोग उसको ले सकते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं गिर सकता हूं। तो तुरंत एक सेकंड की बात है ना, वो तो एक सेकंड की बात है। तो वैसे ही हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये तो मैं आपको सॉल्यूशन बोल रहा हूं, ये वही तो बोल रहा हूं, ये सब चर्चा के विषय है, डिस्कशन के विषय के, हम लोग उसके ऊपर आगे जा सकते हैं डिस्कस करके। ठीक है, तो हमारे 6 पॉइंट हो गए, 3 स्थूल 3 बहुत सूक्ष्म, और 7वां जो पॉइंट है वो हम लोग बहुत कम बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब भी हमें ज्ञान मिलता है हमें बड़े उत्साह से में आते हैं। हमें पहली बार ऐसे ज्ञान मिलता है कि ये शरीर और आत्मा अलग है, टोटली अलग है। लेकिन होता है कि तीव्र पुरुषार्थ करते करते हम लोग उसमें खो जाते हैं और शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो हाँ, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अगर हम लोग अगर बीमार है तो क्या हम लोग तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अगर बहुत पेन में है कोई तो उसका योग लग सकता है? नहीं लग सकता। तो अगर हम लोग हमारे शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते तो हम लोग पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। और देखिए, मजे की बात यह है कि हम लोग जो हाईएस्ट लेवल अचीव करते हैं, कौन सी लेवल है अपनी, कर्मातीत अवस्था, वो हम लोग कौन से आधार पे करते हैं? तो थॉट प्रोसेस, है ना, संकल्प शक्ति के आधार पर। पहले अशरीरी स्थिति, देहीवान स्थिति, और अल्टीमेट जो स्टेज है अपनी कर्मादि स्थिति। तो जब तक ये आत्मा शरीर में है तब तक हम लोग जो भी विचार करते हैं, तो एक पार्ट है शरीर का ब्रेन, तो ब्रेन के कोऑर्डिनेशन में ही करती है। ब्रेन के बिना अगर किसका ब्रेन ठीक नहीं है तो वो थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं चल पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कहां से होती है? हार्ट से होती है। तो जब हार्ट पंप करेगा तभी तो ब्रेन ठीक चलेगा। और हार्ट में जो ब्लड आता है वो कहां से आता है? लंग्स में आता है। जब भी लंग्स में उसमें ऑक्सीजन भरी जाती है तभी वो हार्ट में आती है और फिर ब्रेन को जाती है और फिर ब्रेन ठीक काम करता है। कहने का मतलब ये है कि शरीर का एक एक अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बिना हमारी थॉट प्रोसेस आगे नहीं पढ़ पाएगी, संकल्प शक्ति ठीक नहीं काम करेगी और हमारी जो अवस्था है कर्मातीत वो नहीं हो पाएगी। तो हम लोग शरीर को ठीक करने के, अब देखिए ये शरीर तो कलयुगी है, एकदम अंत का शरीर है, लेकिन बाबा बोलते हैं कि संगम युगी शरीर है भी अपना है, तो बहुत ही अमूल्य है। तो इस अमूल्य शरीर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे, दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी हमारी। ठीक है, तो उसमें क्या है, तीन पॉइंट्स है मेनली। एक तो अपनी फूड हैबिट्स ठीक करनी पड़ेगी, बाद में अपनी स्लीप साइकिल, और बाद में रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, फूड हैबिट तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, स्लीप साइकिल भी मोटे तौर पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि हमें कभी सोना है कभी उठना है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है एक्सरसाइज। तो आप में से कितने जो ब्राह्मण हैं वो डेली 45 मिनट्स एक्सरसाइज वॉकिंग कर, एटलीस्ट वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग करते हैं 45 मिनट्स? कितने हैं? नहीं, 30-45 मिनट्स पकड़ लो, मीन्स मिनिमम 30 मिनट्स कितने करते हैं? फिर भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। अगर हम लोग डेली वॉकिंग, बाकी छोड़ दो आप, प्राणायाम जो है ना, प्राणायाम बोल कि जो एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिस एक्सरसाइज करके हमें दम लगता है, सांस फूलती है, वो एक्सरसाइज करेंगे तो बेनिफिशियल है। प्राणायाम भी ठीक है, ठीक है, बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी ठीक है, और वॉकिंग भी ठीक है, स्विमिंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेस्ट जो है, जो हम लोग कर सकते हैं इजीली, वो है वॉकिंग। वॉकिंग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी शरीर ठीक नहीं रहेगी। वॉकिंग और स्ट्रेचिंग एक जो भी एक्सरसाइज है वो हमारे पूरे शरीर को ठीक कराती है। वो हम हार्ट ले लो, ब्रेन ले लो, ठीक है, लंग्स ले लो। अभी जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीज है, मेनली तीन है मेनली, तो वैसे तो बहुत सारी है, ओबेसिटी है, मोटापा है, बाद में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, बाद में हार्ट की बीमारी है, बाद में स्ट्रोक्स है, किडनी की प्रॉब्लम है जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के कारण होती है, और कुछ टाइप के कैंसर्स, कुछ टाइप के कैंसर्स भी एक्सरसाइज न करने के कारण, मोटापे के कारण हो सकते हैं। मेनली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जो बिगेस्ट किलर है, जो नंबर वन किलर है, और फिर कोलोन कैंसर, बाकी भी और कैंसर है कुछ कुछ वो, लेकिन ये मेजर है। तो अगर हम लोग डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें ये बीमारियां होगी, हमें वो छोड़ेगी नहीं, ठीक है। और ये बीमारी अगर हमें होती है तो क्या हम लोग पुरुषार्थ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये चीजें जो है ना स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। ब्राह्मण जीवन का 24 घंटे का सिर्फ 30 मिनट या 45 मिनट हम लोग वॉकिंग के लिए जरूर निकाले, रोज डेली हम लोग निकाले, मिस ना करें उसको। हालांकि 7 दिन में से 5 बार हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो। तो ये हम लोग ने जो पॉइंट्स है, 7 जो डिफेक्ट है, जैसे हमारे को एक्सरे के ऊपर जो डिफेक्ट दिखते हैं, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है, वैसे ही हम लोग तीव्र पुरुषार्थी जीवन में जो भी डिफेक्ट्स है, प्रॉब्लम्स है, 7 जो मेजर प्रॉब्लम है वो हम लोग डिस्कस की। मुझे आशा है कि आप इसके ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे। अगर इसमें कुछ ऐड करना है ना, कुछ निकालना भी है, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं कि ये डिबेट है, डिस्कशन का विषय है, तो मुझे आप कुछ भी सुझाव दे सकते हो, तो हम लोग मिलके ये फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपने इतनी देर हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए जो एक्सरे में 7 प्रकार के डिफेक्ट्स बताए, उस पर सभी जरूर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो आप सबकी तरफ से, मधुबन की तरफ से आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।